24 जून 2020 आप सब के लिए ये दिन मंगलमय हो। मैं कल की यात्रा से आगे बढ़ूंगी, लेकिन इससे पूर्व मैं आपको श्रीमाला जी की का एक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। वो प्रसंग सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। जब हम भुवनेश्वर से आगे बढ़े तो हमारी गाड़ी कटक के पास पहुंची। कटक पहुँच कर श्री महाराज जी ने कहा, मम्मी जी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का घर है, चलो बाबा आपको उनका घर दिखाता है। हमारी गाड़ी को श्री महाराज जी ने उसी ओर ले जाने के लिए कहा जिस ओर सुभाष चंद्र बोस जी के पिता जानकी दास बोस जी का बड़ा विशाल मकान है। आधे घंटे के पश्चात हमारी गाड़ी घर के मुख्य द्वार पे जा खड़ी हुई। श्री महाराज जी ने चालक को कहा कि यही गाड़ी खड़ी कर दो। स्वयं वो उतर कर एक तरफ खड़े हो गए और हम सबको कहा भीतर जाओ। उस वक्त संध्या काल था, रात आने वाली ही थी। हम भीतर गए, बहुत बड़ा आंगन, दो मंजिला मकान, सीढ़ियां चढ़कर हम दूसरी मंजिल में पहुंचे। वहां पर एक गाइड ने हमें सुभाष जी का कमरा दिखाया। वो कमरा जहां सुभाष जी का जन्म हुआ था, वहां दो बड़े बड़े पलंग लगे हुए थे, त्रिमूर्ति शिवाम कृष्ण परमहंस मां शारदा और स्वामी विवेकानंद जी के फोटो सरहने की ओर लगे हुए थे, और एक काली मां का फोटो था, और सुभाष जी वहाँ बचपन में खड़े दिखाई दिए हैं कि उन्होंने अपनी उंगली से खून निकाल के माता को दिया है। इस तरह से हमने वो अच्छे से सुभाष जी का कमरा देखा, और भी दो चार कमरे देखे, लेकिन रात शीघ्र ही आ गई और हम धीरे धीरे सीढ़ियां उतर करके आंगन से होते हुए मकान के बाहर आ गए। श्री महाराज जी खड़े थे किसी भाव में, लगता था कि वो कोई भूतकाल की मध्य स्मृतियों में खोए हुए थे। हमें देखकर वो हंसे और कहा, देखा है सुभाष जी का घर? हमने कहा जी हाँ। फिर आओ बैठो बैठो, बस में रात हो गई है। फिर वहां से हम बस में बैठ करके प्रातः आगे से आगे गए, और भुवनेश्वर के विषय में मैंने आपको कल ही बता दिया कि भुवनेश्वर में हमने क्या क्या देखा था। और फिर 26 जनवरी 1950 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, जिसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाकर इस देश को एक गणतंत्र बनाया था। यहाँ तक कल हमने ये यात्रा के प्रसंग सुने थे। आज मैं आपको इससे आगे ले जाती हूँ। 26 जनवरी की रात्रि हम बोध गया पहुंचे। 27 जनवरी प्रातः बोध के दर्शन तथा महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति एवं निर्वाण का स्थान देखा। एक दिन पूर्व यहाँ दलाई लामा भी आए हुए थे। थाईलैंड, जापान, बर्मा आदि से भारी संख्या में बोध भिक्षु यहाँ आए हुए हैं। मेला लगा हुआ है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति विग्रह का शांत सौम्य दर्शन दर्शनीय है। मंदिर पत्थरों का बना हुआ है, जिसके चारों ओर द्वार है। भक्त लोग मुख्य द्वार से ही भीतर जा रहे थे। मुख्य द्वार से भीतर जाकर कुछ ही दूरी पर हमने एक छोटा सा शिवलिंग देखा। शिवलिंग को चारों ओर से घेरा लगाया हुआ था। फिर हम भीतर गए और महात्मा बुद्ध जी के दर्शन किए। आज भी यहाँ बोधि वृक्ष अपनी विभिन्न शाखाओं को खिलाता डुलाता हुआ विश्व को प्रेम, मातृत्व एवं शांति का संदेश देता हुआ शोभायमान है। वो बोध वृक्ष वट वृक्ष है, लेकिन बोधि वृक्ष उसको इसलिए कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को वहां बैठकर ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए वो बोध गया के नाम से प्रसिद्ध स्थान बना हुआ है। और महात्मा बुद्ध भी भगवान के अवतार थे, जिन्होंने कलयुग में भगवान के विषय में चुप रहकर मानव जाति के लिए अष्ट मार्ग दिया था। अष्ट मार्ग द्वारा मानव पूर्ण शांति की उपलब्धि कर लेता है। महात्मा बुद्ध जी ने हमारे हिंदू धर्म में उसमें बहुत ही आडंबर आ चुका था। पंडित लोग भक्ति का आडंबर करते थे, आम लोग को भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल जैसी हो गई थी। उसमें महात्मा बुद्ध जी का अवतार हुआ, ये विष्णु के अवतार थे, तो इन्होंने पांडवों से साधारण जनता को बाहर लाया और अष्ट मार्ग का अनुसरण करने को कहा। इसलिए हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म देशों विदेशों में अनेकों जगह फैला हुआ है, लेकिन जिस देश में इसका जन्म हुआ भारत में, उसमें बौद्ध धर्म उतनी संख्या में नहीं है जितना बाहर के देशों में है। राजा महाराजाओं ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। महाराजा अशोक ने कलिंग के युद्ध में जब नरसंहार देखा था तो उन्होंने भी अपनी तलवार रख दी और कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, अहिंसा परमो धर्म। बुद्ध धर्म में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। और अशोक ने अपनी लड़की और अपने बेटे को संगमित्रा, उनकी लड़की का नाम था, और अपने बेटे को दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इस तरह से हम देखते हैं हमारा क्या साक्षी है कि बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए राजाओं ने भी, भारत के राजाओं महाराजाओं ने सहायता की थी। बुद्ध धर्म आज भारत में क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्ध धर्म का असली रूप जो है उसने तंत्र का रूप ले लिया है। आज बुद्ध धर्म में तंत्र जंतर मंत्र बहुत है और वो पवित्रता नहीं है जो महात्मा बुद्ध के समय थी। महात्मा बुद्ध ने कहा था अपने शिष्य को, जो उनके बड़े भाई थे, उनका नाम था आनंद, आनंद कभी स्त्री को संग में मत लेना, मत ज्वाइन करना। लेकिन कहते हैं कि बुद्ध जी के निर्वाण के पश्चात उनके शिष्य आनंद ने महिलाओं को भी अपने संग में आने के लिए निमंत्रित किया और इससे बौद्ध धर्म में बहुत सी पवित्रता फैलने लगी और फैली। खैर ये तो इतिहास की बातें हैं, मैं तो इसलिए सुना रही हूँ कि जो मेरे ज्ञान है वो आप तक पहुँच जाए। अच्छा अब आइए कि मेरे मन में भी विष्णु गया, बौद्ध गया के साथ ही विष्णु गया जी है, बौद्ध गया से भी पुरानी हमारी वहाँ विष्णु गया है। इसके विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। विष्णु गया से मुझे बचपन से ही एक प्यार था, वहाँ मेरा एक भावात्मक संबंध जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी तभी मेरे माता जी सुनाया करते थे कि तेरे पिताजी गया जी गए थे और पैदल गए थे और 6 महीने लगे थे गया जाने को, आने को और जाने को। तो मेरी वो एक कल्पना बनी रहती थी कि 6 महीने लगे पिताजी को कुल्लू से गया जाने के लिए, श्राद्ध करना था श्राद्ध के लिए, तो वो गया कैसी होगी, वो कितना पावन स्थान होगा कि लोग वहाँ जा करके मातृ पितृ श्राद्ध करते हैं, फिर पिता को उपनय लगता है। ये सब मैंने अपने माँ पिताजी के श्रीमुख से सुना हुआ था। और इसके साथ ही जब मैंने श्री राम कृष्ण परमहंस की जीवनी का अध्ययन किया तो मुझे पता चला, मैंने जाना कि उनके पिता श्री शुद्ध राम जी जब गया गए थे और वहाँ पर कुछ दिन उन्होंने निवास किया था, तो उन्होंने एक रात अपने स्वप्न में सोते हुए क्या देखा कि भगवान विष्णु उनके पास आकर कह रहे थे, श्री राम मैं तेरे घर जन्म लूंगा। श्री राम इस पर बोले, मैं तो बहुत गरीब हूँ, दो गुना का भोजन भी नहीं मिलता, चरेना से ही काम चलाना पड़ता है। परंतु भगवान विष्णु ने कहा कि ये भी रूखा सूखा खा लेंगे। यात्रा करके जब श्रीराम का मार्ग पुकर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी गर्भवती है। उनकी पत्नी ने उनको बताया कि मैं घर के साथ वाले शिवालय में जब गई पूजा करने के लिए तो शिवलिंग में से एक भव्य दिव्य प्रकाश मेरे भीतर आ गया और मैं बेहद बेहोश हो गई थी। इसी प्रसंग को सुनकर श्री राम जी को पक्का विश्वास हो गया कि अब उनके घर में कोई महान विभूति अवश्य आएगी। इस वहाँ पर स्वामी जी ने क्या किया कि ये फोटो भी खिंचवाया बोध गया में महात्मा बुद्ध के मंदिर के साथ है। वो फोटो आपको देखने को लाया, आपने देखा भी होगा। इस प्रसंग से जुड़ी भावना के कारण मन विष्णु गया से और भी अधिक बंध चुका था। हम सायंकाल बोध गया से विष्णु गया पहुँच गए और भारत सेवा आश्रम में ठहरे। जब हम विष्णु गया के छोटे से बाजार से गुजर रहे थे तो श्री महाराज जी की दृष्टि एक छोटे से हनुमान की संगमरमर की मूर्ति पर पड़ी और उन्होंने कहा, मम्मी जी हम हनुमान की मूर्ति को कुल्लू ले चलेंगे। फिर हम वापस आए और भारत सेवा आश्रम जो एक संस्था है वहाँ हमने रात्रि निवास किया। ये संस्था शांति पूर्वक अभ्यागतों को निवास की सुविधा प्रदान करती है। रात्रि भर हम भरपूर नींद में सोए, प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सब भक्त पिंड दान करने के लिए फाल्गु नदी की ओर चले। वहाँ फाल्गु नदी जो लुप्त प्राय है उसके तहत सब पंक्ति पर बैठ गए। श्री महाराज जी हमारे साथ नहीं आए थे, वे भारत सेवा आश्रम में ही रह गए थे। तीन घंटे तक पिंड दान किया और सबने श्री विष्णु के दर्शन किए। काले पत्थर की ये विष्णु प्रतिमा सजीव और प्राणवान ही है, लेकिन मंदिर की हालत ठीक नहीं है। मंदिर पत्थर का बना हुआ है परंतु उसकी देखभाल नहीं होती है। श्री विष्णु के पाद पद्मों में नतमस्तक होकर हम सबने प्रणाम किया और साथ ले आए एक मधुर समिति। वहाँ से लौट कर सबने भोजन किया और रात के सफर की तैयारी होने लगी। परंतु श्री महाराज जी तो हनुमान जी को भी अपने साथ कुल्लू ले जाना चाहते थे, इसलिए श्री महाराज जी के साथ मैं और एक भक्त टांगे पर बैठकर उसी बाजार में जा पहुँचे। टांगे से उतरकर श्री महाराज जी सीधे उसी दुकान पर चले गए। मूर्ति का मूल्य पूछने पर पता चला कि उसकी कीमत 1125 रुपए है। दुकानदार को मूल्य ठीक करने को कहा तो वह एक दो मूर्तियों और भी ले आया। उसने ऐसा लगा कि वही हनुमान जी जो कल्प महाराज जी ने देखे थे वही हमारे साथ कुल्लू जाना चाहते हैं। तब श्री महाराज जी ने हनुमान जी को हाथ जोड़कर कहा, हनुमान जी देख लो, यदि हमारे साथ जाना है तो इन लोगों का दिमाग ठीक कर दो। ये कहकर वे दुकान से उतरकर सड़क पर आ गए। तब मैंने दुकानदार से कहा, आप 800 रुपए ले लीजिए। ये सुनकर दुकानदार को क्रोध आ गया। इसे क्रोध देखकर मैंने कहा, आपकी इच्छा है, ये आपकी वस्तु है। ये कहकर मैं भी सड़क पर आ गई, लेकिन मेरा भावुक मन हनुमान जी की ओर ही था, क्योंकि मैं बार बार सोचती थी कि श्री महाराज जी ले जाना चाहते हैं, क्यों 100 रुपए के लिए हम हनुमान जी को छोड़ रहे हैं। जो ही मैंने मुड़ कर देखा तो मुझे लगा कि हनुमान जी हमें ही टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं, और मुझे ऐसा भी भान हुआ वो हमारे साथ चलने के लिए उतावले हैं। और ये देखकर मेरी आंखों में जल भर आया। तभी आवाज सुनाई दी, यदि आपको मूर्ति लेनी ही है तो आप 851 रुपए दे दीजिएगा। बात बन गई, श्री महाराज ने मेरे से पैसे दिलवा दी। दुकानदार का हृदय परिवर्तन सा हो गया था। उसने दूध चाय मंगवाई, फिर तांगा मंगवा कर हनुमान जी की मूर्ति को उस पर रखवाया और स्वयं धर्मशाला तक हमें छोड़ने आया। रात्रि भर सेवा आश्रम में निवास कर प्रातः 27 जनवरी को हमारी बस बनारस की ओर चल पड़ी। लगभग 2 बजे बस सारनाथ पहुंची। वहां जैन स्तूप देखकर काशी में विश्वनाथ जी के दर्शनों के लिए गए। भगवान शिव का उत्तम धाम काशी, जहां राम नाम की जय करके श्रद्धालु देह छोड़ते हैं और मुक्ति प्राप्त करते हैं, उसे देखकर हम सब को हार्दिक प्रसन्नता हुई। श्री महाराज जी बस में ही बैठे रहे, सब भक्त भी दर्शन करके बस में आ बैठे और बस इलाहाबाद की ओर चली। रात्रि लगभग 10 बजे हम इलाहाबाद पहुंचे। यहाँ भी भक्त सेवा आश्रम में ही निवास किया। इन दिनों प्रयागराज में अर्ध कुंभ का मेला चला हुआ था। लाखों की संख्या में भक्त कुंभ के लिए पधारे हुए थे। हजारों तंबू लगे हुए थे। प्रातःकाल हम सब ने अपने अपने वस्त्र लेकर संगम में स्नान करने के लिए चल पड़े। रास्ते में भारी भीड़ थी, सब पैदल चल रहे थे। श्री महाराज जी गंगा मैया के दर्शनों के लिए हमारा उत्साह बढ़ाते हुए आगे से आगे बढ़ रहे थे। एक स्थान पर जाकर एक नौका करके श्री महाराज जी ने हमें नौका में बैठाया और यमुना जी में विहार करते हुए गंगा मैया जी की जय बोलते हुए हम सब भक्त बहुत प्रसन्न चित थे। थोड़ी दूरी पर ही गंगा मैया के दर्शन हो गए और वहां त्रिवेणी संगम पर नौका रुक गई, जहाँ अनेकों नौकाएं डेरा डाले हुए थी। नौका में सवार रहकर ही सब ने बारी बारी गंगा मैया की पूजा करके स्नान किए। पांडवों को यथाशक्ति दान देकर हम नौका द्वारा ही फिर जल से स्थल पर वापस आ गए। वहां से हमने अशोक का किला देखा, जिसमें कई भगवान प्रस्तर मूर्तियां प्राचीन इतिहास की साक्षी हैं। तत्पश्चात हनुमान जी का दर्शन कर श्रद्धालु भावुक हो गए। ऐसा लगा मानो श्री रामचरित मानस की एक पंक्ति हमारे सामने प्रस्तुत है। राम काज की मेघना मोही कहाँ विश्राम। राम भक्त एवं सेवक हनुमान ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं राम जी का कार्य सीता जी की सुधि लाना तथा उन्हें वापस अयोध्या में लाने का कार्य नहीं करूंगा, मैं विश्राम नहीं करूंगा। वहाँ हनुमान जी बड़े आनंद में विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राम कार्य पूरा कर लिया है। श्री हनुमान जी के ये दर्शन हमें उसने की याद दिलाते हैं, जब उन्होंने अथक अनवरत परिश्रम द्वारा अपने प्रभु का कार्य करके एक दिव्य आनंदानुभूति की थी। साथ ही ये निर्देश भी मिलता है कि ये मानव तो दिव्य आनंद की अनुभूति हेतु भक्ति सहित कर्म योग करके सब कुछ श्री प्रभु चरणों में समर्पित करके युक्त हो जा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय प्रभु गीता।